भद्रं नो पिवातय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे महेश्वरी मंगलं दिशतु मे सदाशिव कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरे यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम् नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां ॐ शान्तिः 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 परमात्मने नमः अथ गीतासूत्रम् अथ समीक्षणाद् विषाददर्शनात् जिज्ञासा आत्मज्ञानात् सा तदधिकारार्थं कर्मयोगः स फलासक्तिवर्जनेन ईश्वरार्पणेन च स्वधर्मानुष्ठानम् ततः गुरुसेवा श्रद्धा इन्द्रियजय तत्परताभिः ज्ञानप्राप्तिः सन्न्यासः ज्ञाननिष्ठार्थम् ध्यानयोगेन सा ध्यानयोगेन सा ध्यानयोगेन सा ध्यान योग के अधिकारी कौन हैं, इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने छठे अध्याय के प्रथम दो श्लोकों में किया, जो कर्म फल के आश्रित नहीं है, और कर्तव्य कर्मों को करता है, फल के लिए नहीं करता है, कर्तव्य भावना से करता है, वो कर्मयोग के कर्मयोग के अनुष्ठाता है, और ध्यान योग में प्रवेश के अधिकारी बनते हैं, वो सन्यासी भी हैं और योगी भी हैं। यद्यपि उसने घर नहीं छोड़ा, कर्तव्य कर्मों को नहीं छोड़ा, पर उसने फल संकल्प को छोड़ दिया। अर्थात सांसारिक जो आकांक्षाएं हैं, उसको उसने छोड़ दिया। सांसारिक आकांक्षा है, इहलौकिक पारलौकिक दोनों होता है, उसको छोड़ दिया, और उसको छोड़ करके वो कर्तव्य कर रहा है। तो भीतर से तो सन्यासी है ही है, सन्यास का अर्थ है त्याग। तो उसने फल संकल्पों को छोड़ दिया, इसलिए वो सन्यासी हैं। और फल संकल्प छोड़ने से उसका चित्त बड़ा शांत रहने लगा, तो योगी है। जिसका चित्त शांत हो, समाहित हो, हर परिस्थिति में समभाव उसका बना रहता हो, तो वो योगी नहीं है तो और कौन होगा महाराज। तो इसलिए भगवान ने बड़ी प्रशंसा की कर्मयोगी की, और सचमुच वो प्रशंसा के योग्य हैं। अब अगले श्लोक में वो बता रहे हैं कब वो कर्मों को छोड़ने के अधिकारी बन जाता है, माने कब उसका ये कर्मयोग की साधना पूरी हो जाती है। कब हम समझे कि अब ये हमारा जो टास्क है ये पूर्ण हो गया, अब नेक्स्ट, वो तीसरे श्लोक में बता रहे हैं। और ये श्लोक बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत जगह पर इस श्लोक को कोट किया है, क्योंकि इससे हमारी साधना की जो कक्षाएं हैं वो बड़े स्पष्ट हो जाती हैं। आरुरुक्षोर मुनेर योगं तीसरा श्लोक है। आरुरुक्षोर मुनेर योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। योगम आरुरुक्षोर मुने है। योग में आरोहण करने की, चढ़ने की इच्छा रखने वाले जो मननशील विवेकी हैं, मुनि हैं, देखो उसके लिए मुनि शब्द का भी प्रयोग कर दिया। घर में वो रहता है लेकिन वो मुनि है। मुनि प्रायः माना जाता है जो एकांत में निवास करने वाले, और मुनि शब्द के धातुगत अर्थ मननशीलता होती है। तो दोनों बात इनमें जो है वो घर में रहता है लेकिन उसके भीतर एक एकांतता पनपी है। उसके एक ऐसी, उसके चित्त में, उसके मन में एक ऐसी जगह उसने खोजा है जो सांसारिक वासनाएं, सांसारिक भावनाएं पहुंचती नहीं है। उसको उसने डिस्कवर किया, सांसारिक लोग को वो चीज मिलता नहीं है। हम लोग जब परेशान होते कहां जाए, लेकिन वो एक तो परेशान होता ही नहीं है क्योंकि वो वहीं बैठा होता है ना। देखो घर में रहते हुए व्यक्ति कितना, कितनी प्रगति कर सकते हैं। तो मुनि है, तो योग में आरोहण करने की इच्छा रखने वाले वो मुनि, अर्थात वो योग में आरोहण कर चुका नहीं है, आरूढ़ नहीं है, चढ़ना चाहता है कि मुझे वहां पहुंचना है, उसके लिए कर्म कारणम उच्यते। कर्म, कर्तव्य कर्म उसका साधन है, कर्म करना है। और योग शब्द का अर्थ यहां पर अभी स्वयं ही भगवान स्पष्ट करेंगे, लेकिन समझ लो कि ध्यान योग, अर्थात ईश्वर चिंतन में या आत्म चिंतन में तल्लीन होने की जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उन्हीं को लेकर दिन रात रहने की जो एक शक्ति है, क्षमता है, वो उसने अर्जित कर लिया, ऐसे व्यक्ति। तो योगम माने ध्यान योगम, उसमें चढ़ने की इच्छा रखता है लेकिन उसमें रहने का सामर्थ्य उसको नहीं है। ऐसे जो साधक हैं उनके लिए अभी भी कर्म ही तुम्हारी साधना है। तो कहा कि ये क्या कर्म करते जाएंगे, बोले नहीं, योगारूढ़स्य तस्यैव, वही साधक जब योगारूढ़ हो जाएंगे, योग में आरूढ़ हो जाएंगे, चढ़ जाएंगे, तब समह उस कर्म की जो क्षमता है, कर्म त्याग उपशम, वो उसकी साधना है। अर्थात योगारूढ़ व्यक्ति के लिए कर्मों का त्याग ये उसकी साधना है। उस समय उसके उसको ज्यादा से ज्यादा समय की आवश्यकता है ध्यान में डूबे रहने के लिए, इसलिए कर्तव्यों में वो व्यस्त रहेंगे, फंसे रहेंगे, तो वो टाइम वो नहीं दे पाएगा। इसलिए उस समय वो कर्तव्यों को छोड़ दें, केवल इसी में लगे रहें। तो इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि साधक की दो भूमि भगवान बता रहे हैं, एक कर्मयोग की भूमि और एक ध्यान योग की भूमि। इसका अर्थ ये नहीं समझ लीजिएगा कि हम लोग ध्यान न करें, जरूर करो, ध्यान का अभ्यास तो सबको करना चाहिए, योगाभ्यास सबको करना चाहिए, इसका मना नहीं है, लेकिन निरंतर ध्यान में डूबे रहने की योग्यता ही हमको नहीं है। हमारे भीतर कर्मों का वासनाओं का वेग है, तो उसको जब तक आप शम न कर दो तब तक खाली घर छोड़ करके एकांत में चले जाओगे तो एकांत बड़ा भयानक हो जाएगा। एकांत बड़ा अच्छा लगता है, कई दिन अच्छा लगेगा, कभी जा करके देखना है ना। तो इसलिए अपनी स्थिति को अच्छी तरह व्यक्ति को समझना चाहिए, फिर स्टेप लेना चाहिए। तो ये स्पष्ट हो गया कि एक तो साधना का स्तर है कर्म कर्तव्य, कर्म को करते हुए हम साधक रहे, और एक साधना का स्तर है जहां पर कर्तव्य कर्मों को सब छोड़ दें और केवल हम उस ध्यान के ज्ञान की साधना में डूबे रहें। यही असल में संन्यास, ये जो इसकी जो बात कह रहे हैं, घर छोड़ने का, कर्तव्य छोड़ने का और निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन में डूबे रहने का, यही संन्यास का वास्तविक अर्थ है। संन्यास इसलिए लेना है कर्मों से जिससे हम इसी में लगे रहे। इसलिए जब छठे अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं तो श्रीधर स्वामी जी ने बहुत सुंदर एक श्लोक में संगति जोड़ा, और वो हर अध्याय के प्रारंभ में इसे एक श्लोक में संगति जोड़ते हैं। तो इसके प्रारंभ में लिखते हैं, चित्त शुद्धे न ध्यानं विना संन्यासमात्रतः मुक्ति स्याद् इति षष्ठेस्मिन् ध्यानयोगो वितन्यते। कहा कि चित्त शुद्ध हो गया, संन्यास ले लिया, पांचवें अध्याय में संन्यास की बात आ गई, संन्यास लिया, लेकिन संन्यास ले लिया, चित्त भी शुद्ध है, ध्यान कर नहीं रहा है, मैंने समझ में नहीं आया कि हमको क्या करना है। संन्यास तो हो गए, कर्तव्य कर्म छूट गए उसके, इतनी मैच्योरिटी आ गई, लेकिन ध्यान के बिना मुक्ति न स्यात्। चित्त शुद्धे भी ध्यानम बिना, खाली संन्यास तो ले लिया लेकिन ध्यान नहीं लगा रहा है, जो करने के लिए संन्यास लिया वो नहीं कर रहा है, तो फिर मुक्ति यानी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान ने ये कहा कि भैया संन्यास लेकर इसमें लगो, जो छठे अध्याय का जो हम साधना बता रहे हैं उसमें लग जाओ। तो ये उनके लिए साधना है योगारूढ़ की। एक बार हमारे एक अध्यापक थे तो उन्होंने बड़े सुंदर बात समझाया कि भैया ये कर्म योग और कर्म और संन्यास ये ऐसा गीता जी में घालमेल मालूम पड़ता है, जब जो प्रवचन करते हैं ऐसा लगता है कि हाँ यही ठीक है, दूसरा आ गया तो ऐसा लगता नहीं संन्यास ही ठीक है, तो इसका क्या सामंजस्य है। तो ये भगवान शंकराचार्य जी ने इसी का श्लोक का आधार लिया, तो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ कि गंगा जी के उस पार जाना था तो एक ग्रुप जा रहे हैं, तो उसमें ये हो गया कि भैया चलो नाव पर बैठ जाते कि नाव के बिना तो उस पार जाएंगे नहीं, तो नाव पर बैठ गए सब लोग, नाव वाला उस पार ले गया। अब उसमें एक महाशय हैं, वो कह रहे हैं कि भैया नाव पर बैठ करके ही हम पार आए, इसलिए नाव को हम कैसे छोड़ सकते हैं, हम तो नाव छोड़ के उतरेंगे नहीं तो नाव छोड़ के अगर नहीं उतरोगे तो आपका काम होगा नहीं होगा। कहा कि भैया नाव तो छोड़ना पड़ेगा, तो बोले बैठाया क्यों पहले अरे बैठते नहीं तो क्या होता, उस पार ही रह जाते। तो ये आपका कर्मयोग की साधना एक नाव है महाराज, इसमें बैठना भी जरूरी है छोड़ना भी जरूरी है। अच्छा एक बात और ध्यान देना, कई लोग बहुत जल्दी में होते हैं, हमने देखा जब नाव घुमा करके ले आते हैं ना तो अभी सीढ़ी पर लगी नहीं है और हड़बड़ी में वो पैर रख देते हैं तो क्या होता है, तो ये भी सावधान, ठीक ठाक पहुंच गया देख लो पैर रखने की जगह है तो कूदना भैया है ना। तो ये भगवान कह रहे हैं कि महाराज आरु रुक्ष हो तो जरूर कर्म रूप साधना को अपनाएं, क्योंकि ये ही आपकी साधना है, आपके भीतर के सारी मलिनताएं सारी कमियां ये निकालते रहेंगे, ये साफ करेंगे। अब समस्या ये होती है ना, हम लोग अपने को ये मानने के लिए प्रायः तैयार नहीं होते कि हम प्राइमरी स्टेज के हैं, हम तो एडवांस स्टेज की साधना करेंगे महाराज। तो ये जो है जब बहुत ठोकर ठाकर खाते ना, हम भी ऐसे ही थे बहुत ठोकर ठाकर खा करके व्यक्ति रियलाइज करता है ओहो मैं तो अभी यहां पर हूं, तो अपनी स्थिति को अच्छी तरह समझना चाहिए। इसी प्रकार यही उदाहरण का एक और उदाहरण उन्होंने दिया था, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, बोले कि बनारस स्टेशन पर एक नाटक हो रहा है, जाना था हरिद्वार देखने के लिए, तो उनमें एक महाशय थे तो उनके मित्रों ने कहा भैया चल गाड़ी आ गई। उन्होंने कहा कि भैया देखो मैं गाड़ी में बैठने के लिए तो तैयार हूं लेकिन मैं जहां बैठ जाता हूं फिर उतरता नहीं हूं, तो उतारोगे तो नहीं, बोले उतारूंगा तो सही हरिद्वार जब आएगा, बोले तो फिर मैं बैठूंगा ही नहीं। बड़े मुश्किल से उनको पकड़ करके जबरदस्ती बैठा दिया, हरिद्वार आ गए, अब फिर दूसरा नाटक शुरू हो गया, भैया मैं तो पहले ही बताया उतरूंगा नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है भैया चढ़ो भी और उतरो भी, कर्म ऐसी साधना है इसको पकड़ना भी पड़ता है और छोड़ना भी पड़ता है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में कर्म को बहिरंग साधना बताया, जो एक समय छूट जाता है वो बहिरंग है। अच्छा कब छोड़े, कहा कि योगारूढ़ जब हो जाए। अब योगारूढ़ कौन है इसका लक्षण भगवान बताएंगे, ये चौथे श्लोक से ये योगी के लक्षण बता रहे हैं और नौवें श्लोक तक योगी के लक्षण बताएंगे। तो योगारूढ़ कौन है देख लो, तब जाकर के बात स्पष्ट हो जाएगी। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। यदा हि इन्द्रियार्थेषु न अनुषज्यते, न अनुषज्यते, जब वो इंद्रियों के विषयों में अनुशक्त नहीं होता, माने ये मुझे प्राप्त करना है, इस प्रकार इसकी जरूरत है, ऐसे कर्तव्यता बुद्धि, प्रयोजन बुद्धि उसको नहीं होती। इंद्रियों के विषय कौन है महाराज? भाष्यकार कह रहे शब्दादय, अर्थात इहलौकिक हो या पारलौकिक हो, जो सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा होती है, चाहे वो धन हो, चाहे यश हो, चाहे प्रेम हो, और किसी रूप में हो, तो इंद्रिय के भोग्य वस्तुओं में जब उसको प्रयोजनाभाव बुद्ध्या, उसके प्रयोजन नहीं रहा, प्रयोजन समाप्त हो गया उसका, देखिए बड़ी बात है, प्रयोजन समाप्त हो गया। इसी प्रकार न कर्मसु अनुसज्जते, कर्मों में भी उसका प्रयोजन बुद्धि, कर्तव्यता बुद्धि नहीं रही। देखो कर्मयोगी जब कर्म करते हैं तो यद्यपि सांसारिक पदार्थों को वो आकांक्षणीय नहीं मानता, लेकिन उसकी आसक्ति तो बनी हुई है किसी न किसी रूप में, और उससे भी बड़ी चीज है कि कर्मों में कर्तव्यता बुद्धि है कि ये मेरा कर्तव्य है। तो दो चीज है, एक भोग एक कर्म। भोग माने कर्म के फल का भोग, इसलिए दो ही चीज बताते हैं कि कर्ता भोक्ता। हम लोग क्या है इस समय? कर्ता और भोक्ता। कुछ भोगना है, कुछ करना है, भोग के लिए करना है। तो कर्मयोगी को भोगना है ये बुद्धि तो ढीला पड़ता है, क्यों? भोगने से कभी हम तृप्त नहीं हो सकते, इस प्रकार के विवेक, और सब भूख छूटेगा, ये विवेक उसके भीतर उत्पन्न हुआ है, इसलिए भोग बुद्धि तो उसकी शिथिल हो जाती है, तभी वो निष्काम भाव से कर्तव्यों को करता है। लेकिन फिर भी कर्तव्य बहुत आवश्यक हैं, चित्त शुद्धि के लिए भी आवश्यक है, अपने आप को साफ करना है ना, तो इसलिए कर्मयोग करो। तो भोग्यता बुद्धि और कर्तव्यता बुद्धि ये दोनों होता है सामान्य सांसारिक प्राणियों में। कर्मयोगी में भोग्यता बुद्धि शिथिल हो गई, कम से कम उसके भीतर एक ऐसा विवेक आ गया कि भोग जो है हमारे जीवन को सार्थक नहीं बना सकता है, और ये समझ इतना गहरा है कि वो अपने कर्मों को उस ढंग से, काम्य कर्मों को छोड़ दिया, भोगार्थ जो कर्म है, जो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना है, उसको उसने अपनाया, तो ये साधक श्रेणी में आ गए। और उसको करते करते एक समय वो यहां पहुंच गया, न तो उसको भोग्यता बुद्धि है और न ही कर्तव्यता बुद्धि है, अब कर्म करने की भी कोई आवश्यकता उसको नहीं दिखती है। तो न तो इंद्रिय के अर्थ में वो अनुशक्त होते हैं, और न ही कर्म में अनुशक्त होते हैं। अर्थात वो सर्व संकल्प सन्यासी होता है। कर्मयोगी ने फल संकल्प छोड़ा था, कर्म संकल्प होगा तभी तो कर्म कर रहा था। अब यहां पर सर्व शब्द का प्रयोग करके भगवान ये बतला रहे हैं कि कर्म संकल्प भी उसका समाप्त हो गया। सर्व संकल्प सन्यासी, ऐसा जब हो जाए आपका मन तब आप समझना कि योगारूढ़ तदा उच्यते, वो व्यक्ति योगारूढ़ हैं। तो बहुत स्पष्ट लक्षण है। मैं समझता हूं कि हम सब लोग इसके हिसाब से अपने आप को जज कर सकते हैं। सर्व संकल्प सन्यासी, और जो सर्व संकल्प सन्यास कर देते हैं ना, उसके लिए ध्यान में डूब जाना बहुत आसान होता है। आप देखना, दो ही प्रकार के संकल्प आपको विचलित करते हैं। एक तो आपने किसी को कमिटमेंट दिया, फलाने इतने समय पर उनसे मिलना है, बहुत ज्यादा प्रयोजन शायद आपको नहीं है लेकिन आपने बताया करना चाहिए हमको। अब आपको भजन में जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, तो ये बहुत कोई भोग्यता बुद्धि से आप करते हो ये नहीं है, लेकिन कर्तव्यता बुद्धि से। तो जब तक कर्तव्यता बुद्धि भी है ना, तब तक ठीक ठीक समाधि लग नहीं सकती। हाँ, भले ही अपने आप को थोड़ा जबरदस्ती जो है, अच्छा चलो अभी एक घंटा बाकी है, लेकिन ये जो एक घंटा बाकी है ये दिमाग में टिक टिक करती रहेगी, तो पूरी तरह आपको निश्चिंत होने नहीं देंगे। तो इसलिए आदर्श योग की स्थिति तो वह है जब दोनों प्रकार के संकल्प माने समस्त संकल्प समाप्त हो जाए। सर्व संकल्प सन्यासी। अच्छा, अब जरा इसको स्तरों को देख लेते, श्रेणियां साधक की। भगवान के यहां पर जो शब्दावली है ना, योगारूढ़ जो है वो भी साधक ही हैं, वो अभी सिद्ध नहीं है, है ना, उसकी साधना पूरे करके वो सिद्ध होते हैं। तो पहले मनुष्यों का दो विभाग करो, योगी और संसारी, अयोगी। संसारी में दो विभाग होगा, एक तो धर्म का महत्व नहीं समझता, भगवान के साथ किसी भी प्रकार से जुड़े हुए नहीं है, संपूर्ण रूप से भौतिक हैं, और उसके लिए मोरालिटी का, एथिकल वैल्यूज का बहुत ज्यादा कोई मूल्य, बस अपना जो है कैसे भोग करे। और एक है धर्मात्मा, जो भगवान को भी मानते हैं और उस वैल्यूज को वो फॉलो करते हैं, लेकिन जीवन का लक्ष्य दोनों का भोग है। एक मर्यादा में रह करके भोगना चाहता है, और जब संकट में पड़ते हैं तो भगवान को याद करते हैं, और एक बिल्कुल नास्तिक ही बना हुआ है। तो कम से कम संसारी होने पर भी ये जो दूसरे धर्मात्मा है इनका स्तर बहुत ऊंचा है। एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि ये भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। अगर कहे तो गीता सुनने से पहले तक अर्जुन की स्थिति समझ लीजिए, है ना। अर्जुन जो हैं बिल्कुल, पंच पांडव ही धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान को भी मानते हैं, लेकिन जो हैं वो न्याय के लिए, धर्म के लिए अपने को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये सब अपमान किया है द्रौपदी का, उसका बदला लेना है पूरा, उस ढंग से वो अपने आप को तैयार किया। लेकिन जब सामने परिस्थिति आई तब उनका उनके भीतर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। उससे पहले तक जो स्थिति है वो संसारी की स्थिति है, लेकिन धर्मात्मा है। तो ये चाहे संसारी धर्मात्मा हो चाहे धर्मात्मा न हो, ये दोनों योगी कोटि में नहीं है। तो हम लोग ज्यादातर थोड़े योगी होते हैं, साधक होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी मैं समझता हूं कि कुछ धार्मिक ऐसे होते हैं जो थोड़े सत्संग के साथ जुड़े रहते हैं, खास करके इस प्रकार के जो सत्संग हैं, चाहे गीता हो चाहे उपनिषद हो चाहे भागवते ही हो, माने किसी ना किसी रूप में उनके भीतर ये बात चलती रहती है कि खाली भोग ही परमार्थ नहीं है। ठीक है ना, तो एक खिड़की खोलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि हम पूजा पाठ कर लेते हैं, सत्संग की कोई आवश्यकता, ऐसे बहुत लोग हैं। एक बार एक सज्जन आए बनारस आश्रम में, कहा कि स्वामी जी माफ करना, हम तो मूर्ति को मानते हैं। मने उस समय बड़ा कांड सब हो रहा था धर्म जगत में, लोग बड़े विचलित थे, हम लोग भी बड़े दुबके हुए थे भैया है ना। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम संतों को नहीं मानते लेकिन मूर्ति को मानते हैं, अर्थात पूजा पाठ तो करते हैं संतों को नहीं मानते। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, मूर्ति को मानते हो तो एक चांस है, शायद कभी संतों को भी मानने लगो है ना। तो संतों को मानने का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को आप जो हैं फॉलो करें, इसका ये तो थोड़ा और आगे की बात होगी जब आप गुरु कर लेंगे और एकदम डेडिकेटेड हो जाएंगे। लेकिन हम ये कहना चाहते कि जो सत्संग है और खास करके ये आत्मज्ञान वैराग्य ये भक्ति विवेक इसकी बात करने वाला जो सत्संग है, ये जिनके जीवन में नहीं है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चीज उनके जीवन से मिसिंग है, बहुत बड़ी चीज मिसिंग है। तो धर्मात्मा भले ही हो, धार्मिक हो, लेकिन साधक नहीं है। तो ये तो संसारियों की स्थिति हुई। अब जो योगी हैं उनमें तीन कैटेगरियां बनाई हैं, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो है डिग्री के स्तर के। अथवा यदि धर्मात्माओं को जो संसारी है उनको अगर प्राइमरी में रखना चाहते हो तो चार कैटेगरी बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनमें एक संभावना है ट्रांसफॉर्मेशन की, तो उनको प्राइमरी रखो। और योगी में जो हैं कर्मयोगी, ध्यान योगी और युक्त योगी, ये शब्द गीताजी में आएंगे, युक्त योगी, कर्मयोगी, ध्यान योगी, युक्त योगी। ध्यान योगी जो है वो योगारूढ़, ठीक है। तो कर्मयोग ये समझ लीजिए कि प्राइमरी नहीं है तो सेकेंडरी एजुकेशन में आप आ गए, माने आप सचमुच साधक बन गए। और जब वो साधना पूरी हो गई और आप ध्यान में डूबने का समर्थ हो गए तो आप जो हैं डिग्री में पहुंच गए और वहां पढ़ाई आपने पूरी कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टरी हो गई आपकी, मास्टर बन गए, तो आप युक्त योगी हैं। तो कर्म योगी, ध्यान योगी, युक्त योगी, ठीक हो गया। तो यहां पर जो हैं ध्यान योगी कौन बन सकते हैं, कर्मयोग कब पूरा हुआ, तो कहा कि जब सर्व संकल्प सन्यासी बन जाए, सर्व संकल्प सन्यासी, ये शब्द बड़ा भारी शब्द है। भगवान भाष्यकार ने इसके ऊपर बहुत फोकस किया, कहा कि जो सर्व संकल्प त्याग देगा, वो समस्त कामनाओं को भी त्याग दिया और समस्त कर्मों को भी त्याग दिया है। क्यों? संकल्प से काम जन्म लेता है, काम से कर्म जन्म लेता है। कल मैंने शायद बताया भी था संकल्प का स्वरूप, एक बार फिर याद दिलाता हूं। संकल्प से काम, काम से कर्म, ठीक है। वैसे संकल्प शब्द जो है ज्यादातर हम लोगों की प्रसिद्धि कहां पर है? पूजा आदि कर्म जब करने जाते हैं तो संकल्प करते हैं ना कि अमुक फल के लिए यह कर्म मैं करूंगा, अहम करिष्ये। तो फल के लिए ये कर्म करना है, इसमें हम लोग इसको संकल्प कहते हैं। तो संकल्प की जो क्षेत्र हैं फल से लेकर के कर्म तक ना, इसलिए यहां बताया ना दोनों है। तो फल को चाहना इसका नाम है काम, और कर्म में प्रवृत्त कराना ये कर्म है। तो काम और कर्म ये दोनों को पकड़ा हुआ है संकल्प। अच्छा, संकल्प क्या है भैया? देखो यहां पर एक श्लोक दिया है बहुत बढ़िया, और इसको समझना थोड़ा सा आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक साधक ये निरंतर महसूस करता है और संघर्ष करता है कि अपने भीतर जो नाना प्रकार की आकांक्षाएं हैं, कामनाएं हैं, भोगाकांक्षाएं हैं, उसको हम कैसे समाप्त करें, है ना? ये तो प्रत्येक साधक की निजी लड़ाई है भैया। और तीसरे अध्याय में भगवान ने कहा भी है कि कामेश क्रोधेश, ये जो है तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, और खास करके ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, महाराज जो जानकार लोग हैं वो जानता है कि यही मेरा असली दुश्मन है। तो निश्चित रूप से ये प्रत्येक साधक के लिए बड़ा भारी चैलेंज है। किसी की आलोचना कर देना तो कोई पैसा लगता नहीं है, कोई श्रम होता नहीं है, लेकिन अपने आप को प्योर करो, प्यूरिफिकेशन जब अपनी करनी होती है तब पता लगता है कि अरे ये तो जंगल है, कैसे इसको सफाई करें। और एक जन्म का जंगल थोड़ी है, कितने जन्मों का कूड़ा कचरा, रे राम राम, कैसे साफ होगा। तो ये बड़ी भारी। अच्छा, और हमेशा एक भीतर जो है ना कसम कस, हमारा एक मन बोलता है कि ये गलत हो रहा है ना, और एक मन जो है निरंतर उसके लिए आतुर होता है कि ये होना चाहिए। तो ये जो हमारे जो दो हिस्सा बन जाता है ना, यही तो सबसे बड़ी अशांति है। अशांति क्या है? यही तो है, कोई बाहर से थोड़ा ही अशांति लाते हो, ये भीतर ही अशांति पड़ी है। हमारा दो मन, दो मन क्या, कई लोगों का तो दस दस मन होता है महाराज। तो ये सबको इंटीग्रेट करना, माने ये पक्का निर्णय लेकर के कि हमको करना है, और बिना थके लगे रहना, भगवान का शरण लेकर के, तभी सफलता मिलने वाली है, नहीं कहां मिलने वाली है। ईश्वर की करुणा तो निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन आपकी ईमानदारी बहुत आवश्यक है, नहीं तो भगवान भी क्यों आपके पीछे पड़ेंगे। तो इसलिए दोनों आवश्यक है, अर्थात आपका प्रयत्न और भगवान का आश्रय, दोनों चाहिए, नहीं तो मुश्किल काम है महाराज। तो ये काम कैसे छोड़े, उसके लिए यहां पर जो बात आई है वो ध्यान देने लायक है और प्रयोग करने के लिए ही है। महाभारत के एक श्लोक भगवान भाष्यकार ने उठाया, बहुत प्रसिद्ध श्लोक हैं और बड़े ही एनलाइट करने वाली हैं। एक साधक थे ऋषि, महाभारत में काम गीता आती है, काम गीता है ना, मंकी नाम के एक ऋषि थे, मंकी गीता भी बोलते हैं। तो उनके साथ सत्संग होता है शांति पर्व में, तो वहां पर ये बात आती है, ये श्लोक ये है, माने उन्होंने काम को कैसे जीता, ये बात आई। तो वो ऋषि कह रहे हैं कि काम को मैंने कहा, काम तो बहुत डराता था, और फिर एक दिन मैंने काम को चैलेंज किया। अब काम को चैलेंज करना काम तो हम लोगों को क्या क्या नचाते हैं महाराज, कुत्ते बिल्ली बंदर की तरह। तो कहे काम जानामि ते मूलं संकल्पत किल जायसे न त्वां संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यसि, तेन मे न भविष्यसि। काम तू इतना नाच रहा है, अब मैं तेरा रहस्य पता लगा लिया। जानामि ते मूलम, कहां से तुम उठते हो, तुम्हारा मूल वो मैं जान लिया। जानामि संकल्पात किल जायसे, संकल्प से तुम जन्म लेते हो, ये संकल्प की स्वरूप को समझने के लिए। संकल्पात किल जायसे न त्वाम संकल्पयिष्यामि, मैं संकल्प को छोड़ रहा हूं। तुम्हारा जो संकल्पात्मक रूप है, तुम्हारा जो जन्म बीज है, उसको मैं छोड़ रहा हूं। समूलो न भविष्यसि, और मूल सहित तुम्हारा खत्म हो जाएगा। हम लोगों का क्या है, हम ऊपर ऊपर तो काट देते हैं, मूल तो रह जाता है, और मूल रहेगा तो वो फिर दुगुना ताकत के साथ ऊपर आ जाएगा। तो माने संकल्प त्याग से काम का त्याग होगा, वास्तविक कामना का संहार आप कैसे करोगे, संकल्प को छोड़ करके। संकल्प को छोड़ना, ये बात ध्यान में आनी चाहिए। तो क्या चीज है, देखो काम का मतलब है किसी विषय को प्राप्त करने की इच्छा, है ना, इच्छा ही उसका रूप है। किसी विषय को आप कब चाहते हो, किसी भोग्य वस्तु को आप कब चाहते हो, जब वो आपको दुख दे, कभी नहीं, जब वो आपको सुख दे। अर्थात जब तक वो सुख देने वाले हैं, इस प्रकार से आप उसको नहीं समझते हो, तब तक आप उसकी चाह नहीं करते हो। तो ये सुख प्रद वस्तु है, इसको बोलते हैं संकल्प, सम्यक कल्पनम। ये सुखदायी पदार्थ हैं। ये जो हमारे भीतर कुछ पदार्थों में आस्था बैठी हुई है ना, कि ये सुखदायी हैं, ये जब तक रहेगा तब तक काम को जीतना संभव नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए हो सकता है, बहुत बड़े जोर करके उसको रिप्रेस कर सकते हो, या तो भोग लिया, वासनाओं का बड़ा विचित्र होता है, भोग लिया, थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि खत्म हो गया, वो वेग जो फोर्स था वो समाप्त हो गया। समाप्त नहीं हुआ, वो अपने ताकत एनर्जी जो है ना वो भीतर से जो है ना वो संग्रह कर रहा है, फिर आपको दबाएगा। तो इसलिए ये वासना कहो संकल्प कहो, इनके अपने एक ढंग है, माने हमारे ऊपर कैसे वो चढ़ते हैं, हावी होते हैं, इसके एक तरीके हैं। तो इसको समझना और मूल उसका समझना, देखो हम लोग सुन रहे हैं लेकिन इसका जरूरी नहीं कि सुनने से हमने सचमुच ऐसा समझ लिया कि ये मूल है। हमारे अपनी कामना का मूल क्या है वो मुझे डिस्कवर करना पड़ेगा। ये तो खाली शास्त्र से शब्द से आप सुन रहे हो, आपको खुद रियलाइज करना पड़ेगा। और जब आप रियलाइज करोगे कि यहां पर हमारी ये बुद्धि है, ये निश्चय है कि ये सुख देने वाला है, पक्का निश्चय है। अब जब तक वो पक्का निश्चय है तब फिर कैसे आप उसको त्यागोगे? वो तो जो भी सुख देने वाला, जब भगवान सुखदाई मालूम पड़े तो हम भगवान को चाहने लगते हैं, संसार सुखदाई मालूम पड़े तो संसार को चाहने लगते हैं। ये तो हमारा नेचर है, सुख को चाहते हैं। अब आप कितना भी मना करते रहो ऊपर ऊपर से, वो तो चाहेगा। तो इसलिए काम कहां करना है, साधना कहां करनी है, वो जो सुखद बुद्धि बैठा हुआ है पदार्थों में, वहां पर ये अच्छी तरह ऑब्जेक्टिवली देखना है, समझना है कि क्या सचमुच सुख है उसमें। सुख है तो कोई बात नहीं भैया, क्या सुख है? कहीं ऐसा तो नहीं है सुख का आवरण ओढ़ करके बहुत बड़ा भारी दुख का पहाड़ हमारे ऊपर ला रहा है। तो जब तक ये संकल्प की प्यूरिफिकेशन नहीं होगी तो असल में हमारा मन शुद्ध नहीं हुआ। कर्म योगी जब कर्म करता है तो बड़ी सजगता से संसार के चरित्रों को वो स्टडी करता है, और जितने जितने आपकी समझ बढ़ती है उतने उतने ही आप उससे मुक्त होते हो, आपका चित्त वहां से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए काम को जीतने के लिए दो चीज है, मनुस्मृति में भी आया, गीताजी में भी आया। एक तो इंद्रियों का संयम होना जरूरी है, बाहरी इंद्रियों का भी संयम आवश्यक है। बार बार गीताजी में इंद्रिय संयम की बात आई है, तस्मात् त्वम इंद्रियाण्य आदौ नियम्य भरतर्षभ। क्यों? जिस वासना का आप जितना अभ्यास करोगे वो धीरे 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 आपके ऊपर इतने हावी हो जाएंगे, अनकॉन्शियसली आप उसमें चले जाओगे, आदत पड़ जाती है हम लोगों की, चाहते न चाहते हुए भी उसमें लग जाते हैं। तो एक तो उसमें मर्यादा बांधना आवश्यक है, दूसरा ये जो विवेक ज्ञान है वो क्या है, न तथैतानि शक्ष्यन्ते सन्नियन्तुमसेवया, मनुस्मृति में विषयेषु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यशः। आप उतने नियंत्रण नहीं कर सकेंगे कि भोगना नहीं है, इस भाव से आप बहुत ज्यादा सफल नहीं होंगे, थोड़ी सी सफलता मिलेगी लेकिन भीतर से आप उसके जड़ उखाड़ नहीं पाएंगे। तो विषय की असेवन, विषय की असेवा ये तो चाहिए, साथ ही साथ में ज्ञान चाहिए। कौन सा ज्ञान? कहा कि ये जो विषय में सुख दिखता है ये सुख कभी भर नहीं सकता, कितना भी भोग लो, कितना भी भोग लो, कितना भी भोग लो, तृप्ति हमारी नहीं होगी। न जातु कामः कामानम् उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एव अभिवर्तते। तो इस प्रकार से संकल्प शुद्धि इसकी बड़ी आवश्यकता है, और जब विषय में आपको सुख न दिखे और जो विषय के सुख का आवरण है उसको भेद करके परिणाम ताप संस्कार दुख ये सब दुख रूपता दिखने लगी तो आपका मन स्वभावतः वहां से हट जाएगा। उस समय आपको कसमकस नहीं रहेगा। तो एक प्रकार से समझ लीजिए योगारूढ़ कौन है, जिसके चित्त ने भीतर से ही ये सब भोग्य विषयों को छोड़ दिया। पतंजलि के शब्द में दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वैराग्यम, चाहे दृष्ट विषय हो चाहे पारलौकिक अनुश्रविक विषय हो, उससे जो वितृष्ण हो चुका है वो वैराग्य वशिकार नामक वैराग्य है। तो वशिकार वैराग्य जिनको हुआ वो जो है ये योगारूढ़ माना जाता है, तब वो जो है सचमुच घर छोड़ करके वास्तविक संन्यास के अधिकारी बन जाते हैं। एक छोटी सी कथा आ ही गई तो मैं उसको सोचता हूं कि और शायद हमारे अपने अंतर्मन को अंतर्मन के भीतर कुछ प्रकाश पड़े। एक संत से ही हमने सुना था ये कथा। तो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र युद्ध की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों जंगल में गए घूमने घामने शिकार करने। उस समय काम तो कोई खास था नहीं, दोनों मस्ती ले रहे थे और घूमते घामते अंधेरा हो गया और उनके साथ जो थे वो लोग कहीं भी छुड़ गए। अब भयंकर जंगल में दोनों रह गए रात को। तो दोनों ने विचार किया कि हां तो नीचे जो है बहुत जंतु जानवर भयंकर सब प्राणी घूमते ही हैं, तो उनके साथ लड़ता ही रहना पड़ेगा। ऐसा करो वृक्ष पर चढ़ जाओ। बड़े मोटे ऊंचे वृक्ष थे, दोनों चढ़ गए। तो अब दोनों सो जाए तो भाई खतरा है। तो निर्णय किया कि ऐसा करेंगे आधा मैं सोऊंगा विश्राम करूंगा फिर आधा तुम सो जाना। तो अर्जुन ने कहा कि आप जो हैं निश्चिंतता से सो जाइए, आप थके मैं चौकीदारी करता हूं और जब दो बज जाएगा तब मैं आपको जगा दूंगा, बाकी आप जग लेना। भगवान ने कहा ठीक है। अब मोटी वृक्ष के तने पर सो गए चादर ओढ़ के। अर्जुन चौकीदारी करता रहा धनुष गांडीव लेकर के। तो जंगल में सब स्वाभाविक हलचल जैसा होता है। वो अर्जुन तो महान वीर थे, उनको कहां डर है ये सब। लेकिन अचानक एक समय वो देखे कि अंधेरे नीचे अंधेरा ज्यादा है, ऊपर तो थोड़ा प्रकाश होता है। तो देखा कि वहां उस प्रकाश दिख रहा है। तो देखा कि एक छोटा प्राणी कोई वो चला आ रहा है और उसके शरीर से थोड़ी लाइट। तो उसने देखा, देखता है कि छोटा मनुष्य काला सा। तो देखने लगा ये क्या हो रहा है। अब वो आया, आ करके जैसे चींटी नहीं चढ़ जाता है पेड़ पर, ऐसे चढ़ गया, चढ़ने लगा और अर्जुन के पास पहुंच गया। अब अर्जुन थोड़ा घबराया। अब वो कहता है कि आ जाओ मेरे साथ में। अर्जुन ने कहा आ जाओ। थोड़ा भीतर घबराया, मुक्का मारा अर्जुन ने। अर्जुन ने मुक्का मारा तो वो गिरा ऊपर से। छोटा सा ही तो प्राणी था, गिरा। लेकिन आश्चर्य की बात है कि गिरने के बाद वो थोड़ा सा बड़ा हो गया महाराज। अब फिर चढ़ गया वो। अब फिर वो जो है घुसा ताने अर्जुन जो है फिर घुसा मार के गिरा दिया। अब फिर वो बड़ा हो जाए। अब जितने बार वो जो है उसको घायल करे और गिराए उतना ही ताकतवर हो करके अब धीरे धीरे महाराज वो बहुत बड़ा हो गया। अब अर्जुन भीतर से घबराया कि अब क्या करें, अब घड़ी देख रहे हैं 2 बज क्यों नहीं रहा है है ना, वचन तो ये दिया था कि 2 बजे से पहले जगाएंगे नहीं। तो जब लगभग समय पूरा हो रहा है तब तक जो है अब वो लड़ने लगा है अर्जुन से, मैंने अर्जुन थकने लगा है। अब अंतिम सारी ताकत इकट्ठा करके उसको बड़ी जोर से गिराया, गिरा करके ए कृष्ण उठो 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 करके खूब उसको झकझोर। अरे भैया क्या हुआ, बोले कुछ नहीं हुआ, मेरा टाइम हो गया, मैं सोने जा रहा हूं। अर्जुन सो गया, थका तो था ही और निश्चिंतता भी थी, श्री कृष्ण संभाल लेंगे। दूसरे दिन सुबह अर्जुन की नींद टूटी तो उठ करके देखने लगा इधर उधर, भगवान पूछते क्या देखते हो, बोले नहीं कुछ नहीं। बोले क्या बात है, कुछ तो बात है। बोले आपको रात को कुछ दिखा, कुछ हुआ था, बोले हुआ तो कुछ नहीं था। बोले कुछ नहीं हुआ था, बोले ना। अरे कुछ दिखा तो होगा, बोले हाँ देखा तो था। बोले क्या देखा, बोले वही देखा है काला पुरुष बड़ा भारी बलवान, तो चढ़ाया। हाँ बोले हाँ वो तो चढ़ाया था तो फिर क्या हुआ, बोले क्या हुआ, वो आकर के चैलेंज करने लगा, है मार दूंगा, ये करूंगा, मुझसे लड़ो ये लड़ो। बोले फिर आपने क्या किया, बोले मैंने सोचा कि इससे क्या लड़ना है, मैंने उसकी ओर उपेक्षा कर दी। अच्छा तो उसने कुछ किया नहीं, बोले वो करने का तो पूरा वो जो बड़ा भारी चढ़ाई हुआ था तो फिर क्या हुआ जब आप उपेक्षा कर दिए। बोले जैसे ही मैंने उपेक्षा कर दिया तो वो इतना बड़ा जो प्राणी था वो थोड़ा सिकुड़ गया। अब देखिए इनसाइट देखिए इसमें है ना। बोले फिर जो है वो ऐसे ही करता रहा। अब फिर मैंने दोबारा भी उपेक्षा कर दिया, अब फिर वो सिकुड़ता है। अच्छा फिर क्या हुआ, बोले ऐसे सिकुड़ता गया। बोले वो गया कहां, बोले ये ले हाथ में वो गिरगिरा रहा है, महाराज छोड़ दो, ऐसा हाथ में मुट्ठी बांध के रखा था वो तो इतना सा छोटा हो गया ना। बोले आगे से कभी नहीं लड़ूंगा आपसे। तो ये काम है, जितना आप उससे भिड़ोगे उससे सीधे भिड़ करके आप उसको जीत लो ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि वह आपका ही अपना एक और पर्सनैलिटी है, वो स्वयं आप ही हैं। तो इसलिए अवेयरनेस जागृति कि ये जो परेशान कर रहा है इसका मूल शक्ति ताकत कहां है, संकल्प में। और क्या ये जो हमारी बुद्धि है कि संसारिक पदार्थों में सुख है, क्या ये सच्ची बुद्धि है, इसको जब तक आप नहीं देख पाओगे इसके मूल को तब तक कैसे काम का जय होगा, तब तक कैसे हम ध्यान योग के अधिकारी बनेंगे। सुनते हैं कि भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व प्राप्ति से पहले मार ने बड़ा भारी अटैक किया था, मार माने काम, और उनकी गाथा बड़ी सुनाते हैं और क्या क्या सब उन्होंने उपस्थापित किया, लेकिन भगवान बुद्ध शांत रहे, स्थिर रहे, देखते रहे निर्भीकता से और मार मर गया, हार गया, समाप्त हो गया। तो भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाए बाबा, हमारा भी उस काले को छोटा बना लो इन्हीं शब्दों के साथ ध्यान योगेन साम, ध्यान योगेन साम, ध्यान योगेन साम, श्री कृष्णार्पणमस्तु।